स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित है। विषय है उपासना, मतलब हमारी जो आध्यात्मिक साधना है वो वाकई में फलदायी कैसे बने। हमारे पास उनके एक महत्वपूर्ण उद्बोधन उपासना फलदायी कैसे बने के कुछ अंश हैं। कोशिश रहेगी कि हम उपासना के सिर्फ बाहरी रूप को नहीं बल्कि उसके अंदर के मर्म को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग, आप देखिए, सालों साल लगे रहते हैं पूजा पाठ में, जप तप में, पर उन्हें वो शांति, वो संतोष या अपने व्यक्तित्व में वो बदलाव क्यों नहीं महसूस होता जिसकी उम्मीद होती है। अक्सर हम सुनते हैं स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, वो सब मरने के बाद की बातें, पर गुरुदेव कहते थे कि नहीं, उपासना का फल जो शांति है, जो दिव्यता का अनुभव है, वो तो इसी जीवन में मिलना चाहिए। वो कहते थे कि सिर्फ पूजा की विधि रट लेना वो काफी नहीं है, जड़ तक जाना होगा।
हाँ, और ये बहुत दिलचस्प बात है जो आपने कही। पूज्य गुरुदेव के अनुसार एक बड़ी समस्या ये है कि हम अध्यात्म के फल को ही गलत समझ लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब चमत्कार दिखाना, कोई सिद्धि हासिल कर लेना, और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो निराशा होती है। गुरुदेव ने बुद्ध के एक शिष्य का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। वो शिष्य पहले एक नट था, मतलब कर्तव्य दिखाता था। उसने अपने अभ्यास से बांस पर चढ़कर राजा का सोने का कमंडल उतार लिया। राजा तो बड़े प्रभावित हुए, इसे सिद्धि मान लिया, पर बुद्ध ने कहा कि ये अध्यात्म का पतन है।
पतन क्यों?
हाँ, पतन क्योंकि वो सिर्फ एक शारीरिक कौशल था, अभ्यास का नतीजा। कोई भी होशियार मेहनती व्यक्ति वैसा कर सकता है। सच्ची आध्यात्मिकता, गुरुदेव कहते थे, ये बाहरी कर्तव्य नहीं है।
तो फिर है क्या? अगर ये चमत्कार नहीं, सिद्धि प्रदर्शन नहीं, तो फिर सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब क्या है?
गुरुदेव के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावा बिल्कुल नहीं है, वो है आंतरिक अनुशासन, सेवा का भाव, उदारता, दूसरों के लिए कुछ करना, परोपकार, और सबसे जरूरी अपने व्यक्तित्व का परिष्कार, अपने आप को बेहतर बनाना। जैसे आप गांधी जी को देखिए, ईसा मसीह को देखिए, या खुद बुद्ध को, उनके जीवन में क्या था? एक मजबूत नैतिक चरित्र। यही उपासना का असली लक्ष्य है और यही उसका असली फल भी। सिर्फ पूजा कर लेना नहीं बल्कि अपने जीने का तरीका बदलना।
बिल्कुल, और यही जो व्यक्तित्व का परिष्कार है, जो आंतरिक शांति है, इसे पाने के लिए गुरुदेव ने कुछ बहुत ठोस व्यवहारिक सूत्र दिए हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि ये तरीके हैं अपने आध्यात्मिक माहौल को, मतलब बाहर के भी और अंदर के भी, शक्तिशाली बनाने के। इसमें पहला सूत्र है निश्चित समय। जैसे हमारा शरीर है ना, उसे आदत पड़ जाती है रोज सुबह एक तय समय पर जागना या दूसरी नित्य क्रियाएं, वैसे ही हमारी आत्मा को भी, हमारे मन को भी नियमितता चाहिए। रोज एक ही वक्त पर जब हम उपासना के लिए बैठते हैं तो मन और शरीर वो उस खास समय पर साधना के लिए अपने आप तैयार होने लगते हैं। फिर वो जो मन भटकता है ना इधर उधर, वो कम हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास गहरा होता है।
जी बिल्कुल। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है निश्चित संख्या। यहाँ गुरुदेव ने ये बात साफ की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कोई गिनती गिन रहे है कि कम जप किया तो नाराज, ज्यादा किया तो खुश, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जैसे हम सेहत के लिए भोजन या कसरत की एक मात्रा तय करते हैं ना कि इतना तो करना ही है, वैसे ही जप या साधना की एक निश्चित संख्या वो हमारे अभ्यास में एक अनुशासन लाती है, एक नियमितता लाती है, टालम टोल नहीं हो पाती। फिर गुरुदेव ने यह भी बताया कि पुराने जमाने में माला गिनना एक तरह से समय नापने का भी तरीका था। वो सलाह देते थे कि कम से कम 15 मिनट यानी करीब 3 माला जप रोज नियम से करें, ताकि साधना की एक न्यूनतम मात्रा बनी रहे।
और तीसरा सूत्र, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा दिलचस्प लगता है, निश्चित स्थान। गुरुदेव बताते हैं कि जब हम रोज एक ही जगह पर, एक ही आसन पर बैठकर उपासना करते हैं तो वो जगह धीरे धीरे संस्कारवान बन जाती है।
संस्कारवान, इसका क्या मतलब है?
हाँ, संस्कारवान मतलब हमारी साधना की जो ऊर्जा है, हमारे जो अच्छे सकारात्मक विचार हैं, वो उस जगह के माहौल में बस जाते हैं। वहाँ एक खास किस्म की आध्यात्मिक तरंग, एक वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। जैसे हम सुनते हैं ना, पुराने ऋषियों के आश्रम में शेर और गाय साथ पानी पीते थे, वो क्यों? उस स्थान के प्रभाव से। या जैसे आज भी हम कुछ तीर्थों में जाते हैं, देवप्रयाग हो, लक्ष्मण झूला हो, वहाँ एक अलग सी शांति महसूस होती है ना।
हाँ, होती तो है,
गुरुदेव अपना खुद का अनुभव बताते थे कि उनका जो छोटा सा पूजा का कमरा था उसमें बैठते ही मन अपने आप शांत और एकाग्र होने लगता था, क्योंकि वो जगह रोज की साधना से सिद्ध हो गई थी।
तो अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें, निश्चित समय, निश्चित संख्या और निश्चित स्थान, तो ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं। ये साधक को सिर्फ बाहरी कर्मकांड में उलझाने के बजाय अंदर की तैयारी, अनुशासन और गहरी एकाग्रता की तरफ ले जाते हैं। ये सिद्धांत असल में साधक के अंदर बदलाव लाने में मदद करते हैं। और हाँ, इसी सिलसिले में गुरुदेव एक और अद्भुत सूत्र देते थे जो हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। वो कहते थे, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत।
हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, वाह।
जी, इसका मतलब है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। कल जो हुआ, जो गलतियां हुईं, उन्हें पीछे छोड़कर आज अपना सबसे अच्छा प्रयास करना है और रात को ये मानकर सोना है कि ये जीवन आज पूरा हुआ। इससे जीवन में एक सजगता आती है, हर पल को पूरी तरह जीने की प्रेरणा मिलती है।
तो इसका मतलब निचोड़ क्या निकलता है? पूज्य गुरुदेव के अनुसार फलदायी उपासना सिर्फ मंत्र गिनना या कोई विधि पूरी कर देना नहीं है। ये एक अनुशासित, नियमित और पूरी तरह से समर्पित अभ्यास है जो हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। और सबसे जरूरी बात, हमें इसी जीवन में यहीं पर अभी शांति और दुविधा के अनुभव के पास लाता है। मरने के बाद क्या होगा वो बात की बात है, असली चीज है इस जीवन को अच्छा बनाना।
बिल्कुल सही कहा। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर नियमित एकाग्र उपासना से एक बाहरी भौतिक स्थान जैसे कोई कमरा या कोई आश्रम, वो इतना सिद्ध और संस्कारवान हो सकता है, उसमें शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर सकती है, तो जरा सोचिए जब हम इन्हीं तीन सिद्धांतों, निश्चित समय, निश्चित संख्या और निश्चित स्थान, और यहाँ स्थान का मतलब है मन की एकाग्रता, का प्रयोग करके अपने मन के आंतरिक स्थान को लगातार साधेंगे, तो वहाँ कितनी दिव्यता, कितनी शांति और कितना आत्मिक बल स्थापित हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।